الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں سورۃ الانبیاء کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، معرفۃ القرآن جلد نمبر 6 سے، اور آج ہم نے اس آیت کی جو ابھی تلاوت کی گئی تفسیر پڑھنی تھی. تو اس سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے تفسیر کے ساتھ پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا. اس سے پہلے اور انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اس صورت کے اندر. اور اب حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. مریم علیہ السلام یہ نبی تو نہیں تھیں، لیکن یہ نبی کی والدہ تھی، امی تھی نبی کی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں، والتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت. ٹھیک ہے، التی جو ہے یہ ایک خاص قسم کا اسم ہوتا ہے، اسم اشارہ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں. نہیں، اسم، ہاں اسم موصولہ، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ سے بنتا ہے، اور یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، فیمیل کے لیے. تو ولتی، اور وہ جو احسنت، جس نے کہ یعنی قابو میں رکھا فرجہا، اپنی شہوت کو، ٹھیک ہے، اپنی شہوت کی جو جگہ ہے اس کو قابو میں رکھا، اس کی حفاظت کری. ٹھیک ہے، فنفخنا فیہا، پس ہم نے پھونک دیا اس کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی مریم علیہ السلام کے اندر پھونک دی، مر روحنا، اپنی روحوں میں سے ایک روح، من فروم میں سے روحنا، اپنی روحوں میں سے، ٹھیک ہے، یا اپنی روح. وجعلناها، اور ہم نے بنا دیا اس کو، وابنها، اور اس کے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو نہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹا نہیں، بلکہ مریم علیہ السلام کا بیٹا، آیتن للعالمین، ایک نشانی تمام عالمین کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے، ایک نشانی بنا دیا. یعنی نشانی کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ جو کہ کسی چیز کی طرف نشاندہی کرے. تو کس کی طرف نشاندہی کرتی ہیں یہ ساری کی ساری نشانیاں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نشاندہی کرتی ہیں. ٹھیک ہے، انسانوں کو متوجہ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ بھی ایسی نشانی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسانوں کو اور جنوں کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا. تو ایک ہی آیت ہے، تو اس کا ترجمہ ہم نے کر لیا، اب خلاصہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں. اور اس میں خلاصہ تفسیر ہی ہے معارف و مسائل، کے اللہ تعالیٰ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نہیں لکھے. ٹھیک ہے، تو خلاصہ تفسیر جو ہے اس میں فرماتے ہیں کہ والتی احسنت فرجہا، اور ان بی بی مریم کے قصے کا بھی تذکرہ کیجئے، کیونکہ تذکرے چل رہے ہیں تمام انبیاء کے، تو یہاں پر بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے ناموں، اپنے ناموس کو، ناموس جو ہے وہ اردو زبان کے اندر عزت کو، عزت و ناموس کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اپنی عزت کو، اپنے وقار کو مردوں سے بچایا. یعنی دوسروں سے بچایا، غیر محرموں سے بچایا، ہر ایک سے بچایا. ٹھیک ہے، اپنی عزت کو بچایا انہوں نے. احسنت فرجہا، نکاح سے بھی اور ناجائز سے بھی، یعنی اوور آل مردوں کے قریب نہیں گئی. ٹھیک ہے، تو ना नाजायज तरीके से ना नाजायज तरीके से, बिल्कुल यानी नाजायज तरीका तो वैसे भी एक मोमिन और शरीफ औरत जो है वो इख्तियार नहीं करती, लेकिन इनके साथ क्या खासियत थी कि इनका निकाह भी नहीं हुआ था, ये जायज तरीके से भी किसी मर्द के करीब नहीं गई। फिर हमने फनफखना फीहा मिन रूहिना, फिर हमने उनमें बवास्ताए जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी रूह फूंक दी। ठीक है, यानी रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने जो है वो इनके बतन में अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई जो रूह थी वो फूंक दी। हदीस मुबारक से पता चलता है कि हर इंसान जो इस दुनिया के अंदर आता है, ठीक है, तो उसका एक तरीका होता है, मर्द और औरत का इख्तलात होता है, और उसके बाद फिर औरत के जिस्म के अंदर जो है वो एक हमल ठहर जाता है। लेकिन ये जो हमल जब ठहरता है तो इसके अंदर इब्तिदा में रूह नहीं होती, ठीक है, इब्तिदा के अंदर वो एक एक फिजिकल क्रीचर तो होता है, लाइक, और उसके अंदर बाकायदा मूवमेंट भी होती है, यानी जब 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 फीटस जो है वो बन जाता है और सारी तफसीलात डॉक्टरों का एरिया है, तो उसके अंदर जो है वो बाकायदा मूवमेंट होती है और उसके अंदर जो है नशोनुमा बूदोबाश वगैरह हो रही होती है, बाकायदा अपनी गजा ले रहा होता है और गजा ले ले करके जो है वो उसका साइज बढ़ रहा होता है, और तो इस वजह से उसके अंदर एक एक किस्म की रूह तो होती है, एक किस्म की रूह तो उसके अंदर होती है, जैसे कि हर मखलूक में अल्लाह ताला ने रूह रखी हुई है, जब वो मखलूक अल्लाह ताला ने क्रिएट करी तो वो रूह उसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है, जैसे कि दरख्तों के अंदर रूह मौजूद है, ठीक है, पत्थर के अंदर रूह मौजूद है, दरिया के अंदर रूह मौजूद है, ठीक है, जब नबी अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम ने पहाड़ को मुखातब किया उहद, ठीक है, तो उहद क्या है, ये पत्थर है, एक बहुत बड़ा सा जो पत्थर होता है ना, तो उसको जो है वो पहाड़ कहा जाता है, ठीक है, अब उस पत्थर के अंदर छोटे छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उन तमाम पत्थरों का मजमुआ जो कि उस मुकाम के ऊपर खड़ा हुआ है वो जबल ओहद कहलाता है, तो एक पूरे के पूरे मजमुए को खिताब किया ओहद, ठीक है, ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद खड़े हुए हैं, ये पांचों हजरात खड़े हुए थे, नबी अलैहिस्सलाम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक, उस्मान गनी और अली करम अल्लाह वजहु, ये सब के सब खड़े हुए थे, उहद जो है ना इनका इनका बोझ नहीं संभाल सका, मुतहम्मल नहीं हो सका और लरजना शुरू हो गया, है ना, ये सबसे बड़ी शख्सियात खड़ी हुई है मेरे ऊपर, राइट, अल्लाह के महबूब खड़े हुए हैं और उनके ऐसे ऐसे ये खुलफा खड़े हुए हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूरे उहद को मुखातिब किया, और ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक शेख, एक सिद्दीक और के तीन शुहदा, या ये दो शुहदा उस वक्त दो खुलफा थे, तीन तीनों खुलफा आखिर वाले जो शहीद हुए थे, उमर रतान भी, उस्मान रतान भी, अली रतान भी, उहद जो है वो लरजना बंद कर दिया उसने। उसी तरह दरियाए नील, दरियाए नील जो है वो जब बंद हो जाया करता था बहना साल के अंदर, तो मिस्र वाले जो काफिर थे तो वो एक नौजवान लड़की को जबाह करते थे और उसको जो है वो दरिया नील के अंदर फेंक देते थे, तो फिर वो दरिया नील चलना शुरू हो जाता था, ठीक है, तो जब मुसलमान पहुंचे, अमर इब्न अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पर मुसलमान लश्कर के साथ पहुंचे तो देखा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ तो कहता तहत आ जाता है, तो अगर एक लड़की को नहीं फेंका जाएगा इसके अंदर तो हम तो कहत से मर जाएंगे, हमारी तो फसलें तबाह हो जाएंगी, लेकिन मुसलमान तो ऐसा नहीं कर सकता, मुसलमान के लिए तो मुमकिन ही नहीं है कि किसी किसी बेकसूर को जो है वो बगैर कसूर के कत्ल कर दिया जाए, राइट, तो अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को खत लिखा कि ए अमीरुल मोमिनीन ये मामला आ गया है यहाँ पर, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक खत वापस जवाब में लिखा और कहा कि इस खत को जो है ना वो दरिया नील में फेंक देना, ठीक है, और बस, उस खत को फेंक दिया गया दरिया नील के अंदर। उस खत में क्या लिखा था उमर रज़ी अल्लाह ने कि ए नील, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो मत चल, हमें तेरी जरूरत नहीं है, तू मत चल अगर तू अपनी मर्जी से चलता है, ठीक है, लेकिन अगर तू अल्लाह की मर्जी से चलता है तो अल्लाह के नबी के सहाबी तुझे हुक्म दे रहे हैं कि तू चलना शुरू हो जा, ठीक है। तो उसके बाद से जो नील चला है तो आज तक नहीं रुका, ठीक है। तो नील को मुखातिब किया, यानी पूरा का पूरा दरिया नील जो है ना वो एक एंटिटी, एक रूह के तौर पर है ना उसको मुखातिब कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हैवानात भी नहीं है, ये तो नबातात भी नहीं है, ये तो जमादात में से है ना, पत्थर और पानी, ठीक है, लेकिन जमादात के अंदर भी रूह, ठीक है। उस जब तो ये जो जमादात थे, नबी अलैहि सलाम पत्थरों के पास से गुजरते थे तो पत्थर जो है वो सलाम करते थे, अस्सलाम वालेकुम या अय्युहन नबी, ठीक है, सलाम किया करते थे पत्थर। और फिर उसी तरीके से नबातात तो इनसे ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म है, वो भी नबी अलैहि सलाम के गम के अंदर रोना शुरू कर दिया दरख्त के तने ने, हालांकि उसका तो दरख्त कट चुका था, तो वो मुर्दा हो चुका था, लेकिन उस तने ने रोना शुरू कर दिया आका अलैहिस्सलाम के लिए। तो उसके अंदर रूह, और हैवानात के अंदर रूह का तो हमें नजर भी आता है, उसका तो कोई इनकार भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो रूह तो होती है, लेकिन जो इंसान वाली रूह है, जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रूह अल्लाह ताला ने बनाई है, वो जो है जब उस हमल के ऊपर जो है वो एक सर्टन टाइम गुजर जाता है, 120 दिन गुजर जाते हैं, तो फिर एक फरिश्ता अल्लाह ताला भेजते हैं, वो फरिश्ता आ करके उसके अंदर रूह फूंकता है, वो अल्लाह ताला के हुक्म से वो रूह जो है आलमुल अरवाह से, जो कि सबसे पहला स्टेशन है हमारा, जहां पे कि अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को पैदा करके वहां पे जमा करके रखा हुआ है, ठीक है, कि जब तुम्हारी बारी आएगी तब तुम जाओगे इस दुनिया के अंदर। तो आलमुल अरवाह से उस रूह को लेकर के आता है वो फरिश्ता, और उस रूह को जो है फिर इस औरत के अंदर फूंकता है, ठीक है। तो फिर जो है ना ये एक जिंदा इंसान बन जाता है, इंसान बन जाता है, एक बंदा बन जाता है, अब्द बन जाता है, उससे पहले ये अब्द नहीं था, ये जो माँ के पेट में चीज थी ये अब्द नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद ये अब्द यानी अल्लाह का बंदा बन जाता है, और फिर जो है ना वो आगे चलता है। इसी वजह से शरीयत के अंदर जो है वो अबॉर्शन जो है वो इसके बाद नहीं की जा सकती, ठीक है। इस वक्त अगर अबॉर्शन कर दी गई तो वो बाकायदा एक इंसान का कत्ल होगा, एक इंसान का कत्ल, बेशक माँ बाप ने क्यों ना किया हो, ठीक है। अबॉर्शन क्या है, उसको खत्म कर देना, मार देना उसको, ठीक है। तो माँ बाप ही करें ये काम, माँ करे अगर, या बाप की मर्जी से हो या किसी की भी मर्जी से हो, ये एक इंसान का कत्ल कहलाएगा, ठीक है। तो बगैर शरी वजह के ऐसा करना हराम है, वरना फिर कत्ल का मुजरिम होगा वो शख्स जिसने भी ये काम किया, कत्ल का फिर बदला भी कत्ल से ही किया जाता है, ठीक है। शरीयत वो काजी साहब उसको कत्ल नहीं करो, वो वाला उसूल उसके ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो वो कत्ल का मुजरिम है ना, कत्ल का जो मुजरिम है जिसने अबॉर्शन की है, तो फिर अब जिस तरह कातिल को तौबा करनी होगी अगर बचना है सजा से, जिस तरह कातिल को तौबा करनी होगी उसी तरह इस माँ या इस बाप को भी तौबा करनी होगी, वरना फिर सजा, ठीक है। तो इनके ऊपर जो है वो फिर अल्लाह ताला ने खसूसी तौर पर जो जो फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे ना, उनके साथ रूह को भेजा, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल बंदे की बात हो रही थी, ठीक है, जो कि अल्लाह ताला के मुकर्रब नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, तो इनकी रूह दे करके भेजा, और उन्होंने आकर के हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के अंदर जो है वो रूह को फूंक दिया, ठीक है। तो ये कोई एक्सेप्शनल वाकया उस अंदाज में नहीं था कि ओ अल्लाह ताला की नाउज़बिल्लाह रूह फेंक दी, तो इसी वजह से तो ईसाई जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं, नहीं भाई, तो हर इंसान के साथ ऐसे ही होता है, अल्लाह ताला इसी तरह फरिश्ते के साथ जो है वो रूह को भेजते हैं और वो हमल के अंदर रूह फूंकते हैं, तभी तो वो बंदा बनता है, उससे पहले तो वो बंदा होता ही नहीं। फर्क सिर्फ इसके अंदर ये है कि बाकी इंसानों की पैदाइश जो है ना उसके अंदर बाप का भी अमल दखल होता है, और इनकी पैदाइश के अंदर और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा, ये तीन इंसान ऐसे हैं, आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा और ईसा अलैहिस्सलाम, कि जिनकी दुनिया के अंदर पैदाइश में बाप का इनका अमल नहीं है। ठीक है, ये फर्क है। तो अपनी रूह फूंक दी जिससे उनके उनको बेशौहर के हमल यानी बगैर शौहर के हमल रह गया, और हमने उनको और उनके फर्जंद ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया जहान वालों के लिए अपनी कुदरते कामिला की निशानी बना दिया, कि उनको देख देख सुनकर समझने कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वो बगैर बाप के भी औलाद पैदा कर सकता है और बगैर माँ और बाप के भी, जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, यहाँ पे हजरत ने अम्मा हव्वा का जिक्र नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि अम्मा हव्वा भी जो है ना, वो भी इस प्रोसेस से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को जो है वो क्रिएट किया था, और फिर इसी तरीके से रूह जो है वो उनके अंदर भी फूंकवा दी थी, वो भी जिंदा बंदी बन गई अल्लाह की। ठीक है, बाकी इन्होंने मारूफ मसाइल के अंदर इसकी तफसील नहीं लिखी, उसकी वजह गालिबन यही लगती है कि पीछे जो है वो सूरह मरियम के अंदर इसकी बहुत ज्यादा तफसील मौजूद है, और पूरी की पूरी सूरह मरियम हम इस क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं, और बहुत लंबे अरसे तक उसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। जो नई तालिबात हैं, अगर उनको मौका मिले और शौक हो उनको, तो वो सूरह मरियम की तफसील की सारी रिकॉर्डिंग जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है। एक लिंक भेजते हैं ना, जब व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजते हैं आपको ग्रुप में, तो उसके अंदर पास्ट रिकॉर्डिंग्स के नीचे एक वेबसाइट का लिंक होता है, रिमेम्बर अल्लाह डॉट ऑर्ग और ऑनलाइन तफसीर क्लासेस वगैरह, उसके ऊपर, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो पीछे जितनी सूरतों की हम तफसीर इस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं उन सब की रिकॉर्डिंग जो है वहाँ पे पड़ी हुई है, उसमें सूरह मरियम भी शामिल है। अच्छा, किसी ने यहाँ पे सवाल लिखा है डायरेक्ट मैसेज में, तो वो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन आपने सवाल जो लिखा है ना उसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों मिक्स हैं, तो वो कट करके इधर उधर हो गया, तो वॉइस ब्रेक हो रही है, तो हम मॉडम के सामने के बैठे हैं। अच्छा, अगर अगर बेहतर ना हो ही हो तो बताइएगा, फिर फोन पे स्विच कर लेंगे, उसमें वॉइस ब्रेक नहीं होती। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि, अच्छा बाकी लोग कह रहे हैं कि ठीक है चलें, इनका सवाल क्या था कि सलाम वालेकुम, कैसे यानी बच्ची पूछ रही है इनकी कि कैसे शैतान से वो हमारी हिफाजत करते हैं, बच्चे तो गुनाह करते ही नहीं, तो फिर सैलाब में क्यों बह गए, कैसे फरिश्तों की फौज बनाई। ये फाइट का लफ्ज निकाल करके आप उसको फिर से जरा एंटर कर दें, ठीक है, फाइट के लफ्ज से जो है ना ये पूरा टूट गया है आपका सेंटेंस, तो बेहतर है कि मैं सही पढ़ लूँ सब जवाब देने से। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद हम जब तक ये आयात पढ़नी शुरू करते हैं, सूरह अंबिया की आगे की आयात, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्लाह शैतान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना हाजिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फअबुदून। ठीक है, कि बेशक ये हाजी ही का तर्जुमा ये है, इसमें इशारा हाजी, ठीक है, तो ये जो है उम्मतुकुम तुम्हारी उम्मत, उम्मतन वाहिदतन, ये तुम्हारी जो उम्मतें हैं ना, उम्मतुकुम तुम्हारी उम्मतें, उम्मतन वाहिदतन एक ही उम्मत है। ठीक, ये जो, अच्छा यहाँ पे तर्जुमे में जो है वो उम्मत का तर्जुमा हजरत ने दीन से किया है, ठीक है, तो ये तुम्हारे जो दीन है, क्योंकि दीन से जो है ना वो उम्मतें बनती हैं, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स बन गए तो उनकी एक उम्मत है ना, ईसाइयों की उम्मत हो गई, एक यहूदियों की उम्मत हो गई, एक जो है वो दूसरे अदयान वाली उम्मतें हो गई, इसी तरह मुसलमानों की उम्मत हो गई, तो फरमाते हैं कि ये सब के सब ना एक ही उम्मत है। ठीक है, वह क्या मतलब कि ये अल्लाह ताला ने कोई अलग अलग दीन नहीं उतारे थे दुनिया के अंदर, ठीक है, कि ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई अलग दीन उतारा, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई अलग दीन उतारा, बल्कि अल्लाह ताला ने दीन तो एक ही उतारा है, एक ही रास्ता है अल्लाह ताला का बताया हुआ, जिसको दीन इस्लाम कहते हैं, लोगों ने, इंसानों ने जो है वो उसकी मुख्तलिफ शक्लें बना ली, ठीक है, तो असल में तो सब एक ही है ना, तो वह अना रब्बुकुम और मैं हूं रब्बुकुम तुम्हारा रब, तुम्हारा बनाने वाला भी और तुम्हारा पालने वाला भी, ठीक ٹھیک، تمہاری تمام ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا کرنے والا، اس کو کہتے ہیں رب، رب کائنات، تمام ضروریات کو اپنی مخلوق کی درجہ بدرجہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ ضروریات کو پورا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کیا، تو وہ انا ربکم، بالکل یعنی اب جو ہے نا وہ جو ٹینس استعمال کر رہے ہیں، جو صیغہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ واحد کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، ورنہ پیچھے جو صیغہ تھا وہ کیا استعمال کر رہے تھے کہ ہم نے پھونک دیا، ہم نے اپنے روح میں سے جو ہے وہ بنا دیا اور ہم نے اس کو بنا دیا، وجعلناها، یہ پلورل کا صیغہ تھا، ہم، وی، انگریزی میں وی جس جیسے کہتے ہیں، تو اگر کسی کو شک بھی ٹھہرے نا کہ جی یہاں پر وی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیوں استعمال کیا، ہم کا صیغہ کیا، اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہے کیا، ایک سے زیادہ والا پروردگار ایک سے زیادہ ہے، نہیں، انا ربکم، میں ہوں تمہارا رب، تم سب کا رب، ٹھیک ہے؟ اس کو بالکل کلیئر کر دیا، کسی کے ذہن میں کوئی اشکال اور احتمال پیدا ہو کہ جی اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہے، ایک سے زیادہ خالق ہے، ایک سے زیادہ جو ہے وہ بنانے والا ہے، فاعبدون، یہ اصل میں کیا ہے، فاعبدونی، کہ تم سب کے سب میری عبادت کرو، ٹھیک ہے؟ عبادت میں کوئی شرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اطاعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیچھے نے فرمایا کہ اطاعت جو ہے نا وہ تو تم کو میں نبیوں کے واسطے سے کرواؤں گا، کہ میں نبی کو بتاؤں گا کہ وہ آگے تمہیں بتائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو تم نبی کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے؟ اور وہی نبی کی اطاعت جو ہے وہ میری اطاعت بنے گی، ٹھیک ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو رسول کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت بن جائے گی، لیکن عبادت کے اندر نبی بھی شریک نہیں، یہ نہیں کہ نبی کی عبادت کرو گے تو میری عبادت بن جائے گی، عبادت جو ہے نا وہ صرف اور صرف میری ہی ہے، وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینهم کل الینا راجعون، اور تقطعوا، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، امرهم بینهم، اپنے معاملے کو آپس میں انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی انہوں نے جو ہے نا وہ تفرقہ بندی کر لی، انسانوں نے جو نبیوں کے اصل راستے سے بہک گئے، گمراہ ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ ٹکڑے بنا لیے، قطع قطعات بنا لیے، ٹکڑے بنا لیے، تو ان کا معاملہ جو ہے نا پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی ابتدا میں تو ایک ہی دین تھا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین دے کر کے بھیجا، لیکن لوگوں نے جو ہے وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے بنا لیا، کل الینا راجعون، سارے کے سارے ہماری ہی طرف، الینا ہماری طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں، راجعون رجوع کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کے بارے میں فرمایا کل الینا راجعون، ٹھیک ہے؟ ایونچولی جو بھی انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے وکڑے بنائے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ جو ہیں وہ کسی اور کی طرف لوٹیں گے، وہ کسی اور کی طرف لوٹیں گے، اور فلانے دین والے کسی اور کی طرف لوٹیں گے، لیکن نہیں، لوٹنا تو سب نے ایک میرے پاس ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ میں نے ہی ان کا حساب کرنا ہے، میں نے ہی ان سے پوچھنا ہے، پھر میں نے ہی ان کا فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، فَمَنْ، پس جو، من یہ بھی ایک اسم موصولہ ہے، جس طرح الَّتِي، الَّذِي، یہ سب اسم موصولہ ہوتے ہیں عربی گرامر کے حساب سے، اسی طرح من جو ہے یہ بھی، وہ جو، پس وہ جو، فا کا ترجمہ پس اور من کا ترجمہ وہ جو، یعمل، عمل کرتا ہے، من الصالحات، نیک اعمال میں سے، صالحات صالحن کی جمع ہے، اور یہ نیک کو کہتے ہیں، لیکن صالحات کا لفظ قرآن مجید کے اندر نیک اعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صالحات، ویسے ورنہ اس کو جو ہے وہ نیک عورتوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کانٹیکسٹ کے حساب سے ترجمہ کیا جاتا ہے، तो यहाँ पर से आपको सबाब से इसका तर्जुमा नेक औरतें नहीं, क्योंकि मैं ये अमल जिन्होंने नेक औरतों का काम किया नहीं, बल्कि जिन्होंने नेक काम किए। ठीक है, आमाल जो है वो भी अरबी में जो लफ्ज है उसके लिए वो मुअन्नस कसीरा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जिसने जिसने भी नेक आमाल किए वह हुआ मोमिन, और वो मोमिन भी था। ठीक है, यानी सिर्फ नेक आमाल नहीं किए बल्कि वो मोमिन भी था। क्या मतलब मोमिन था? चले पूछ लेते हैं आपसे कि वो मोमिन भी था, इसका क्या मतलब है कि वो मोमिन भी था? नेक आमाल किए, नेक आमाल क्या मतलब? इबादतें करी, नमाज पढ़ी, जैसे हम मुसल्ले की इबादतें कहते हैं, उसने जो है वो इंसानों की मदद करी, चैरिटी के काम किए, और उसने जो है वो दुआएं मांगी, उसने दुआएं मांगी। दुआ तो बड़ी जबरदस्त इबादत है ना, मुखल इबादत। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला आगे से जो है वो हुआ मोमिनुन, और वो मोमिन भी था। क्या मतलब इसका? ईमान के साथ। ईमान क्या चीज होती है, यही तो आपसे पूछ रहे हैं, वरना आपने तर्जुमा करके क्या क्या जवाब दिया? ठीक, तर्जुमा तो हम कर चुके, वो मोमिन भी था, मतलब ईमान के साथ। मतलब क्या है ईमान का, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। We need to have iman to get good deeds. Otherwise, everything will result in no good deeds for the hereafter. नहीं, सवाल का जवाब दें कि मोमिन का क्या मतलब होता है? मोमिन इसलिए कहा गया कि उनके हाथ और जुबान से दूसरे महफूज रहते हैं। माशाल्लाह, आपने तो बड़ी जबरदस्त हदीस पढ़ी है। अल्लाह के नबी की अताअत भी करता था। मोमिन गुनाह से बचता है, अताआत करने वाला, मान कर चलने वाला, अब्बू की मान के चलने वाला या मम्मा की मान के चलने वाला, मानने वाला, किसकी मानने वाला, यानी गुनाहों से बचता था, शिर्क से दूर रहे, और नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल किया। इसको मोमिन कहते हैं। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अताअत और रसूल की अताअत, बंदा जुबान और दिल दोनों से कलमे का इकरार करे, अल्लाह और उनके रसूल की अताअत। चलें, कुछ ने करीब करीब जवाब दिए हैं, लेकिन सीधा साधा एक जवाब नहीं मिला अभी तक। नबी अलैहिस्सलाम की अताअत, ठीक है, जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेके आए हैं उसकी तस्दीक करने वाला, ठीक है, समझना वाता। जी, तो मोमिन कौन होता है? मोमिन वो होता है कि ये एक नहीं आई है, इनको जो है जवाब देना है व्हाट्सएप के ऊपर, अपने आप को सबसे अलग बनाना, ये सही बात नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे सारी बात हो रही है तो यहाँ पे जवाब दो, आप कोई स्पेशल है कोई दूसरों से? ठीक, व्हाट्सएप के ऊपर जवाब देंगे, मैं आपके लिए व्हाट्सएप भी देखूँ साथ साथ क्लास के अंदर, तो नजर पड़ गई इस वजह से आप देखें। बहरहाल, तो मोमिन कौन होता है? शरीयत का पाबंद, फिर वही बकरातियत। मोमिन कौन होता है भाई? देखें, जिसने नेक अमाल किए, ठीक है ना, नेक अमाल क्या होते हैं? नेक अमाल वो होते हैं, अच्छा चले, नेक अमाल का तो मतलब बताएं, नेक अमाल क्या होते हैं, कौन से अमाल नेक होते हैं, किसको कहते हैं नेक अमल करना, कौन सा अमल नेक अमल बन जाता है, जो किस किस लिए किया जाता है? जी, फिर उसके बाद मोमिन के अल्लाह पाक की रजा के लिए, लेकिन अ डीड दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाइक्स, नहीं, जो अमल अल्लाह के लिए किया जाए। आपका जवाब गलत है, अ डीड दैट अल्लाह लाइक्स, ये गलत जवाब है। ठीक है, जवाब यह है जो सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए, अल्लाह की रजा के लिए, ठीक है ना, सही नीयत से जो अमल, सही नीयत क्या है, अल्लाह की रजा, और आखिरत की जजा भी उसी में शामिल है, क्योंकि अल्लाह की रजा मतलब आखिरत की जजा। यानी एक इंसान कोई नेक अमल कर रहा है, ठीक है ना, कोई काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, चाहे अपनी बीवी के मुंह में निवाला डाल रहा है, बीवी के मुंह में निवाला डाल रहा है, ये भी नेक अमल बन जाता है ना, जब अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, आखिरत की जजा के लिए किया जाए, तो ये नेक अमल बन जाता है। ठीक है, अल्लाह को राजी करने वाला अमल जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, ये आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, कि जो अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, आखरत के सवाब के लिए किया जाए, ये नेक अमल होता है। ठीक है, लेकिन वहुआ मोमिनुन, और वो ईमान वाला भी हो, क्या मतलब ईमान वाला, वो मेरे नबी को मानने वाला भी हो, वो मेरे नबी को मानने वाला भी हो, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। नेक अमल क्या हो गया, जो एक बंदे ने अल्लाह की रजा के लिए किया, ठीक है, और दूसरा अमल क्या है कि नबी को जो जो ईसा अलैहि सलाम आए, मूसा अलैहि सलाम आए, इब्राहिम अलैहि सलाम आए, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनको अल्लाह का नबी, अल्लाह का वली है ना, मानता हो कि ये अल्लाह के नबी भी हैं, ये अल्लाह के वली भी हैं, राइट, इसलिए कि हर नबी जो है वो वली भी होता है, तो उसका मामला क्या होगा, फला कुफराना लिसाई, हम उसके मेहनतों को जाया नहीं करेंगे, हम उसकी मेहनतों को जाया नहीं करेंगे। ठीक है, क्या मतलब कि अगर कोई मोमिन नहीं है, यानी अल्लाह के नबी को नहीं मानता, नबी कौन होता है जी, फरिश्ता, जिन या इंसान, एक इंसान होता है, नबी कौन होता है, एक इंसान होता है। अल्लाह ताला ने नेक अमल के कबूलियत की शर्त क्या लगाई कि वो इस इंसान को भी मानता हो कि ये अल्लाह का नबी है, जो कुछ कह रहा है सब कुछ सही कह रहा है ना, जो कुछ कह रहा है सब कुछ सही कह रहा है ना, जब तक ये बात नहीं मानेगा अल्लाह के एक बंदे के बारे में जो कि अल्लाह का नबी होता है, उस वक्त तक उसकी जितनी इबादतें हैं ना अल्लाह की रजा की खातिर, नेक अमल क्या होता है, अल्लाह की रजा की खातिर किए हुए अमल, राइट, आखिरत की जजा की खातिर नेक अमल किए हुए। ठीक है, यानी क्या मतलब कि नबी को माने बगैर भी एक इंसान जो है वो अल्लाह की रजा के लिए अमल कर सकता है ना, कोई ऐसा अमल कर सकता है जो कि वो नियत ये रखे कि मैं अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहा हूं, मैं किसी इंसान के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना, और जो है वो ये भी नियत कर सकता है अगर वो आखिरत को मानने वाला इंसान है, जैसे कि यहूदी आखिरत को मानते हैं, ईसाई आखिरत को मानते हैं, और भी बहुत सारे लोग आखिरत को मानते हैं, किसी ना किसी शक्ल में मानते हैं, ठीक है ना, तो वो कहे कि मुझे तो आखिरत में इसकी जजा चाहिए, मुझे तो सवाब आखिरत का चाहिए, मैं इसलिए नेक अमल कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह ताला उसकी इस नीयत को और उसके इस अमल को रद्द कर देंगे, रद्द कर देंगे, ठुकरा देंगे, तुमने बेशक मेरी रजा के लिए अमल किया है, इसमें कोई शक नहीं कर रहा कि तुमने मेरी रजा के लिए अमल नहीं किया, हाँ तुम्हारी नियत मुझे खुश करने की थी, तुम्हारी नियत जो है वो आखरत के सवाब की थी, लेकिन कबूल नहीं करूंगा, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा इसका, फायदा तो तुम्हें उस वक्त होगा जब तुम मेरे नबी को मानोगे, वहुवा मुमिनुन, जब तुम मेरे नबी को मानोगे, क्या मतलब अल्लाह को मानता है, आखिरत को मानता है, दैट इज नॉट इनफ, दैट इज नॉट इनफ फॉर कबूलियत, तुमने कर लिया तुम्हारी मर्जी, कबूल नहीं करूंगा मैं तुम्हारे इस बात को, अमल को, ठीक है ना, कबूल तो उसकी शर्त है कबूलियत की, नबी को मानना, क्योंकि मोमिन का मतलब सिर्फ यही होता है, नबी को मानने वाला, बाकी तफसीलात हैं उसकी, आखरत पर ईमान और फरिश्तों पर ईमान और कदर के ऊपर ईमान, वो सब तो जो नबी ने बताया कि फरिश्तों पर ईमान लेकर के आओ, आखरत पर ईमान लेकर के आओ, ये करो वो करो, ऐसे करो ये करो वो करो, वो सब तो नबी ने बताया ना, ठीक है, उसी तरीके से किसी ने आप में से सवाल किया था, उनको कहा था कि भाई क्लास में पूछ लीजिएगा, तो वो पूछ ही नहीं रही, उनकी मर्जी, ठीक है, कि अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत जो होती है ना वो ऐसे नहीं हो जाते कि अल्लाह के लिए, मैं तो अल्लाह के लिए करती हूँ, मैं तो अल्लाह के करीब हो गई, मैं तो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो गई, मैंने तो फलाना कर लिया, वो टमकाना कर लिया, नहीं, ठीक है, अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत की जो है ना वो शर्तें हैं, एक बंदा खालिसतन अल्लाह के लिए कोई काम कर रहा है, خالصتاً اللہ کے لیے کام کر رہا ہے لیکن وہ قبول نہیں ہوگا جب تک وہ شرائط پوری نہیں کرتا ہوگا. ٹھیک ہے, بہرحال ان کے سوال کا یہ ایکچوئل جواب نہیں ہے لیکن ابتدا یہیں سے ہوتی ہے اس جواب کی. ٹھیک ہے نا, کہ سب سے پہلی شرط کیا, ایک انسان کو جس نے آ کر کے دنیا میں کہا تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں بتاؤں گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, میری اطاعت کرو, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ, میری اطاعت کرو, ہے نا. تو اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تب تمہارے نیک اعمال قبول ہوں گے, ورنہ نہیں قبول ہوں گے, کچھ کر لو تم. ٹھیک ہے, فلاح کو فرانا ہے, تو ہم اس کے محنتوں کو, ان کی محنتوں کو جو ہے وہ رد نہیں کریں گے. کفران کا مطلب ہم ان کو نگیٹ نہیں کر دیں گے, رد نہیں کر دیں گے. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, اور بے شک اس کے لیے ہم کاتبون, اس کو لکھ لیتے ہیں, نیک اعمال کو لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو اس نے ایمان کے ساتھ کیے ہیں نیک اعمال, تو ان نیک اعمال کو ہم نیک اعمال والے فرشتے سے کہتے ہیں, داہنے ہاتھ والے فرشتے سے, کرام کاتبین, داہنے ہاتھ والا جو ہے اسے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے پاس لکھ لو. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک لمبا مضمون شروع ہو رہا ہے, تو اس کی بجائے جو ہے وہ اوپر جو جنہوں نے سوال لکھا تھا تو اس کو ہم ایڈریس کر لیتے ہیں. کہ انہوں نے لکھا تھا کہ بچی پوچھ رہی ہے کہ ایک منٹ سکرول اپ کر کے, کہ شیطان سے کیسے لڑیں ہم انسان, کیسے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں, ان کی فوج کیسے بنتی, بچے سیلاب میں کیوں بہ گئے, بچے تو گناہ نہیں کرتے. یہ کوئی ایک سوال تو آپ کا نہیں ہے ماشاء اللہ. اب یہ جب سیدھا کر کے آپ نے لکھا ہے اس کو, تو یہ تو کوئی کتنے پانچ سوال بن گئے کم از کم. شیطان سے کیسے لڑیں ہم انسان, ہم شیطان سے لڑ نہیں سکتے, ڈائریکٹلی نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے, شیطان جو ہے نا وہ ایک انداز سے اگر دیکھا جائے تو ہم سے زیادہ طاقتور ہے نا, اس کے پاس فزیکل پاور جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ ہے. ویسے تو ہم سے زیادہ افضل تو وہ نہیں ہے, لیکن فزیکل پاورز ہمارے سے زیادہ ہیں, کیونکہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے, تو دیکھنے کی پاور اس کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے وہ جو ہے وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے اور بڑی تیزی سے کہیں جا سکتا ہے, ہم نہیں جا سکتے, تو ایک فزیکل پاور اس کے پاس ہم سے زیادہ ہے. جیسے ہاتھی کے پاس فزیکل پاور ہم سے زیادہ ہے نا, شیر کے پاس طاقتیں ہم سے زیادہ ہیں نا, اسی طرح بہت سارے جانور ہیں جو کہ اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں, ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے, تو جانور کے پاس طاقتیں ہم سے زیادہ ہیں, لیکن افضل تو نہیں ہوتا نا جانور انسان سے. اسی طرح شیطان کا بھی معاملہ ہے. ٹھیک ہے, تو جس طرح آپ کسی شیر سے نہیں لڑ سکتے نا, ٹھیک ہے نا, شیر سے لڑ سکتا ہے کوئی انسان, چاہے کوئی بہت ہی فلم کا ہیرو تو وہ لڑ سکتا ہے, ورنہ تو کوئی نہیں لڑ سکتا. ٹھیک ہے نا, اسی طرح شیطان سے ہم ڈائریکٹلی نہیں لڑ سکتے. تو بھائی جس نے شیر کو سدھایا ہوا ہے اس سے ہم دوستی کر لیتے ہیں اور وہ پھر ہمیں شیر سے محفوظ رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا, یا شیر سے بچنے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسے جا کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. رائٹ, نہیں, بلکہ شیر سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کسی محفوظ جگہ میں رکھتے ہیں, ہے نا. ہم جو ہے وہ چڑیا گھر جا کر کے شیر کے پنجرے کے اندر نہیں کود جاتے, ہے نا. ابھی کوئی بندہ جو ہے وہ پتہ نہیں افریقہ کے کسی ملک کے اندر جو ہے نا وہ کود گیا, تو شیر نے جو ہے وہ اس کو بھمبوڑ کر کے ختم کر دیا, مار دیا اس کو. ٹھیک ہے نا, تو شیر سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ شیر سے لڑنا شروع کر دیں, بلکہ اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کریں. رائٹ, اپنے آپ کو محفوظ جگہ پر رکھیں, اپنے آپ کو یا تو جب سفاری میں جاتے ہیں تو ایک پنجرے نما گاڑی کے اندر جاتے ہیں, اسی طرح شیطان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے حفاظتی تدابیر اختیار کر کے. اور جو شیطان کا بھی رب ہے, شیطان کا بھی جو کنٹرول کرنے والا ہے, اس سے دوستی بنا کر کے. ٹھیک ہے, ایسے جو ہے نا وہ شیطان سے حفاظت ہوتی ہے. شیطان سے لڑنے کا مطلب یہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا کیسے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں, تو فرشتے ایسے حفاظت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے جو کیا کہتے ہیں چڑیا گھر کے اندر, رائٹ, یا سفاری جو ہوتا ہے, تو سفاری کے اندر جو ہے نا وہ کچھ ایسے ٹرینڈ امپلائیز ہوتے ہیں سفاری کے, کہ جو کہ شیر کو جو ہے نا وہ حالانکہ وہ بھی انسان ہی ہے, لیکن وہ شیر کو جو ہے نا وہ سدھانا جانتے ہیں, انہوں نے وہ اس کے ٹرینرز ہیں, ہے نا. تو ان کے پاس ایک ٹیکنیکس ہوتی ہیں شیر کو قابو کرنے کی. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے پھر اپنے اوپر سے جو ہے وہ آرڈرز لیتے ہیں اور پھر شیر کو جو ہے نا وہ جیسے نچانا چاہتے ہیں ویسے نچاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے شیطان جو ہے, تو یہ بھی جو جس قسم کی مخلوق ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتے رکھے ہوئے, اور فرشتوں کو جو ہے نا اس کو ہینڈل کرنے کی ٹیکنیکس آتی ہیں. ٹھیک ہے, اگرچہ کہ یہ جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے, وہ جو ہے نور سے بنے ہوئے ہیں, ठीक है ना। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि आग वाला जो है वो ज्यादा ताकतवर होगा नूर वालों के मुकाबले में, जैसे कि शेर जो है वो ज्यादा ताकतवर है चिड़ियाघर के एम्प्लॉयज के मुकाबले में, लेकिन एम्प्लॉयज को पता है कि कैसे करना है इसको, ठीक है, टैकल कैसे करना है। उसी तरह से फरिश्तों को अल्लाह ताला ने सिखाया हुआ है कि इसको कैसे जो है वो दूर रखना है बंदों से। तो फरिश्ते जो है ना फिर वो हमारी हिफाजत करते हैं, उसके लिए किसी किस्म की भी वो चीज इस्तेमाल करते होंगे ये हमें पता ही नहीं, नजर ही नहीं आता, ठीक है। बस उनके पास अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसा इक्विपमेंट दिया हुआ है जैसे आतिशी कोड़े, राइट, मिसाइल टाइप की चीज दी हुई है कि जिससे कि जो है ना वो शयातीन को मार सकते हैं, मारते हैं, ठीक है, तो इंसान की हिफाजत हो जाती है, ठीक है। तो मिसाइल सिस्टम उनके पास मौजूद है, आप अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि उनके पास गन्स, बुलेट्स, ऐसी गन्स हैं, ऐसी बुलेट्स हैं, ऐसे मिसाइल्स हैं कि जो कि शयातीन को हिट कर सकती हैं, ठीक है। तो वो फिर बंदों की, जिसकी अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं कि इसकी हिफाजत करो, शयातीन से ऐसे हिफाजत कर देते हैं। उनकी फौज कैसे बनती है भाई, वो अल्लाह ताला जो है वो बहुत सारे भेज देते हैं। जो फौज का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग होते हैं ना, जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, तो उनको फौज कह देते हैं। उसी तरीके से फरिश्ते जो है वो उनके अल्लाह ताला ने बाकायदा फौजें बनाई हुई है ना, कोई जो है वो बारिश बरसाने वाले फरिश्ते हैं तो उनकी फौज बनी हुई है, कोई जो है वो दूसरे काम करने वाले फरिश्ते हैं तो उनकी फौज बनी हुई है। फौज का मतलब बस ये कि बड़ी तादाद में जो लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक 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 डिसिप्लिन तरीके से कोई काम करते हैं उसको फौज कह देते हैं। तो फरिश्तों का यही मामला है। बच्चे सैलाब में क्यों बह गए, बच्चे तो गुनाह नहीं करते हैं। तो भाई सैलाब में जो बहने की जो रीजन होती है ना, वो सिर्फ गुनाह करना नहीं होता, ठीक है ना, सिर्फ गुनाह करना नहीं होता, बल्कि सैलाब में बह जाना जो है ना, ये एक तो मौत का एक सबब है, ठीक है ना। तो इस दुनिया के अंदर हर इंसान जो आया है तो उसने मरना है, ठीक है। तो अब उसके मरने की शक्ल जो है वो ये भी हो सकती है कि उसको जो है वो कोरोना वायरस हो गया है, तो वायरस जो है वो अंदर गया, उसने जाकर के जो है वो अंदर गुदगुदी करनी शुरू करी और बिलाखिर इंसान जो है वो मर गया, ठीक है ना। तो मरने की शक्ल जो है वो वायरस हो सकता है, मरने की शक्ल जो है वो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ठीक है ना। मरने की शक्ल जो है वो कोई और कैंसरस ट्यूमर हो सकता है, मरने की शक्ल जो है वो कोई भी इस किस्म की चीजें हो सकती हैं, है ना। छत पर से नीचे गिर गया, मर गया, ठीक है ना। तो अब कोई इंसान छत पर से नीचे करके गिर करके मर गया, तो जरूरी तो नहीं है ना कि उसने गुनाह किया था, है ना। हो सकता है गुनाह किया हो, लेकिन बगैर गुनाह के भी छत से गिर के मर सकता है। उसी तरह किसी की जो है वो तलवार है, लड़ने के लिए गए काफिरों से, वहां पर जो है वो किसी काफिर ने तलवार मार दी, मर गया, ठीक है। तो मरने की शक्ल जो है वो तलवार के लगना भी हो सकता है किसी दुश्मन की, राइट, गोली का लगना भी हो सकता है। उसी तरीके से जो है ना वो सैलाब में बहना जो है ये भी मरने की एक अल्लाह ताला का एक तरीका है कि भाई इनको इस तरीके से दुनिया से वापस बुला लिया, ठीक है। अब इन्होंने जो अमल किए उसके हिसाब से जो है वो आगे फैसला होता है कि क्या करना है इनके साथ, इनकी कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खोलनी है या जहन्नुम की खिड़की खोलनी है ना। कब्र के अंदर कब तक रहेंगे, हजारों साल, जब तक कयामत ये दिन नहीं उठाए जाते उस वक्त तक कब्र में रहेंगे, ठीक है ना। तो अब जिसने गुनाह किए हैं उसके कब्र के अंदर जो है वो उसका अजाब शुरू हो जाएगा, या जहन्नुम की खिड़की भी खुल सकती है जो भी, और जिसने गुनाह नहीं किए तो उसकी कब्र जो है ना वो जन्नत का एक टुकड़ा, जन्नत की खिड़कियां खुली हुई हैं, वहां से ठंडी हवाएं भी आ रही हैं, वहां से जो है वो मजे मजे की चीजें पहुंच रही हैं इनके पास, ठीक है। और उसके अलावा भी बड़े मजे होते हैं कब्र की जिंदगी के अंदर। तो बच्चों के साथ क्या होता है, क्योंकि उन्होंने गुनाह किए ही नहीं, क्योंकि वो तो अभी बालिग हुए ही नहीं, ठीक है, तो दुनिया से तो चले गए, लेकिन कहाँ गए, अच्छी जगह पे चले गए, दुनिया से ज्यादा अच्छी जगह पे चले गए, है ना। और वहां पे रह करके जो है ना वो माशाल्लाह जन्नत की हवाएं खा रहे होंगे, ठीक है। तो दुनिया से तो हर एक ने जाना है ना, जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है वो, उसका इंतकाल हो जाता है तो वो भी तो दुनिया से चला गया ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी कुछ बेबी ने गुनाह किया था इस वजह से दुनिया से चला गया, है ना। तो दुनिया से जाना जो है ये कोई सजा नहीं होती, हर बंदे के लिए नहीं होती, वो उसके अमल पर डिपेंड करता है। तब अगर गंदे अमल किए थे तब सजा है, वरना सजा नहीं है। उसी तरह से बच्चों का मामला बिल्कुल क्लियर, उन्होंने बुरे अमल किए ही नहीं तो उनका दुनिया से जाना उनके लिए कोई सजा नहीं है, बल्कि उनके लिए तो दुनिया से निजात है, राइट, और ज्यादा बेहतर जगह के ऊपर उनको अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया, ठीक है। तो बच्चों को इस तरीके से फिर आप एक्सप्लेन, जो छोटे बच्चे हैं उनको आप ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इस एक्सप्लेनेशन के अंदर मजीद आप डिटेल्स शामिल कर सकते हैं। अच्छा आगे कुछ और किसी ने लिखा था, वो देख करके क्लास खत्म करते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो गया। औलाद के लिए क्या बेहतर करना चाहिए, यानी कि रोजा कुछ औलाद के लिए आयत है, रोजा कुछ औलाद के लिए आयत। समझ में नहीं आया आपका सवाल। 3 साल की लड़की अक्सर मुझे पूछती है कि अल्लाह ताला कहाँ रहते हैं, तो मैं कहती हूँ कि हर जगह। क्या ये सही है? आप बेहतर जवाब बता दीजिए। फस्तवा अलस अल अर्श, कि वो अर्श के ऊपर जो है वो ठहर गया। ठीक है, तो अब उलमा का इसके ऊपर इल्मी इख्तलाफ है। कुछ उलमा के नजदीक जो है ना वो अल्लाह ताला अर्श के ऊपर रहते और कहीं नहीं रहते, अर्श के ऊपर ही रहते। ठीक है, और दीगर उलमा जो हमारे अकाबिर उलमा देवबंद हैं, तो उनके नजदीक अल्लाह ताला जो है ना वो अपने इल्म और अपने इल्म के साथ, अल्लाह ताला जो है वो इल्म के साथ कुदरत के साथ अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। ठीक है, फिजिकली मौजूद होने की जो अल्लाह ताला की कैफियत है ना वो ऐसी है कि हमारी छोटी सी जो अकल है ना, छोटी सी अकल राइट, वो उसका इदराक कर ही नहीं सकती, उसको समझ ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो इस वजह से ना उस अल्लाह ताला को एक फिजिकल एंटिटी के तौर पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करना ही फजूल है, कोशिश करना ही फजूल है, बिल्कुल अपने वक्त का जाया है, बल्कि बिदत है ये कि अल्लाह ताला को फिजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके ऐसा है वैसा है जैसे कि हम समझते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो इस डिस्कशन, अल्लाह ताला कहाँ है, बस नबी अलैहि सलाम ने ऊपर ऐसे इशारा कर दिया, तो बस इतना काफी, अल्लाह ताला ऊपर। ठीक है, अब हमारे जहन के अंदर इतनी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम जो है ना वो एग्जैक्ट जो है वो उसको समझ सकें, तो आगे बच्चों को क्या समझाएंगे? जो बात समझ सकते हैं वो बच्चों को समझाएंगे ना, तो खुद ही नहीं समझ सकते वो क्या बच्चों को समझाएंगे। आसान जवाब ये है कि अल्लाह ताला ऊपर है, और ऊपर जो है ना बस ऊपर, बस आसमान, और फिर ऊपर जो है वो अल्लाह ताला की कुर्सी, अल्लाह ताला का अर्श वगैरह सब कुछ। औलाद के लिए वजीफा बताइए भाई, वजीफे हम बताने का काम तो ऐसे ही नहीं करते, आप पता नहीं कौन से किस चीज के लिए वजीफा पूछ रहे हैं। ठीक है, चलें, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, असल में और लोगों की आगे क्लासेस भी होती हैं, इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।